नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। भारतीय चाय निर्यातक संघ ने वर्ष 2023 में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार से समर्थन की मांग की है। रूस और यूक्रेन के बीच में संघर्ष और यूरोप तथा खाड़ी देशों जैसे पारंपरिक बाजार से चाय की मांग में गिरावट जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच उन्होंने सरकार से समर्थन मांगा है। चाय निर्यातकों को वर्ष 2022 में 18% की वृद्धि दर्ज करने के बाद चालू वित्त वर्ष में निर्यात में 10% या उससे अधिक की गिरावट का अनुमान है। मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण चाय उद्योग इस बात को लेकर भी आशंकित है कि चालू वित्त वर्ष में वो कितनी मात्रा में उत्पादन कर पाएंगे। जनवरी से मार्च सन 2023 की अवधि में कुल निर्यात 6% घटकर 4.81 करोड़ किलोग्राम रह गया। भारतीय चाय निर्यातक संघ के अध्यक्ष अंशुमन कनोरिया ने पीटीआई भाषा को बताया, वर्ष 2023 के लिए परिदृश्य बहुत ही उम्मीदों वाला नहीं है। वर्ष 2022 में मुख्य रूप से श्रीलंका में कम फसल होने की स्थिति के कारण अच्छी वृद्धि देखी गई थी। श्रीलंका चाय निर्यात में अब थोड़ा सुधार हुआ है और अन्य प्रतिकूल परिस्थितियां भारतीय चाय निर्यात की मात्रा और मूल्य को प्रभावित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर निर्यातकों को चाय निर्यात में 10% का नुकसान हो सकता है और 20 करोड़ किलोग्राम का आंकड़ा पार करना चुनौतीपूर्ण होगा। दैनिक उपभोग के सामान बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर के चेयरमैन नितिन परांजपे ने सोमवार को कहा कि मूल कंपनी यूनिलीवर को दी जाने वाली रॉयल्टी बढ़ाकर 3.45% करने का फैसला विस्तृत चर्चा और जांच परख के बाद किया गया है। एचयूएल ने साल की शुरुआत में मूल कंपनी यूनिलीवर पीएलसी को दी जाने वाली रॉयल्टी 2.65% से बढ़ाकर कुल कारोबार का 3.45% करने का फैसला किया था। यह फैसला 3 वर्षों में चरणबद्ध ढंग से लागू किया जाएगा। परांजपे ने रॉयल्टी बढ़ाने के पीछे के तर्क के बारे में पूछे जाने पर शेयरधारकों से कहा कि व्यापक जांच परख और इस भुगतान के एवज में वाजिब मूल्य मिलने की संतुष्टि होने के बाद ये बदलाव किया गया था। उन्होंने कहा कि इस दौरान एचयूएल ने एफएमसीजी यानी दैनिक उपयोग का सामान बनाने वाली कंपनियों के क्षेत्र की अन्य कंपनियों द्वारा अपनी मूल कंपनियों को दी जाने वाली रॉयल्टी के अनुपात पर भी गौर किया था। एचयूएल का यूनिलीवर के साथ 10 वर्षों का रॉयल्टी एवं केंद्रीय सेवा करार जनवरी सन 2023 में खत्म हो रहा था। इसके बाद यूनिलीवर ने रॉयल्टी अनुबंध की समीक्षा करने का अनुबंध किया था। जीएसटी अधिकारियों ने 569 फर्जी कंपनियों के परिचालन और उनके माध्यम से गलत तरीके से 1,047 करोड़ रुपए के इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि माल एवं सेवा कर जीएसटी के आसूचना अधिकारियों की जयपुर टीम ने 14 राज्यों में फर्जीवाड़ा करने वाले इस गिरोह का पता लगाया है। ये गिरोह दिल्ली में रहकर फर्जी कंपनियों के जरिए फर्जीवाड़ा करता था। मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली के निवासी ऋषभ जैन ने इन फर्जी फर्मों के संचालन के लिए 10 कर्मचारी रखे हुए थे। इनकी गतिविधियों पर नजर रखने और आंकड़ों की पड़ताल के बाद अधिकारी इस फर्जीवाड़े में शामिल मुख्य व्यक्ति का पता लगाने के साथ उसे पकड़ने में सफल रही। इस गिरोह ने फर्जी कंपनियों के जरिए 6022 करोड़ रुपए के कर योग्य कारोबार को दिखाने वाले बिल जारी किए और इनकी मदद से 1062 करोड़ रुपए के इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया गया। अभी तक जीएसटी अधिकारियों ने इस गिरोह और ब्रोकरों के 73 बैंक खातों को जब्त कर लिया है। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने पशु चिकित्सा दवाओं और टीकों के आवेदनों को समय से विचार करने और गैर आपत्ति प्रमाण पत्र एनओसी देने के लिए सोमवार को नंदी पोर्टल शुरू किया। पशु चिकित्सा दवाओं और टीकों के आयात, विनिर्माण और विपणन का विनियमन स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO के दायरे में आता है। हालांकि पशु चिकित्सा दवाओं और टीकों के आयात विनिर्माण की अनुमति मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के परामर्श से दी जाती है। मौजूदा व्यवस्था में कामकाज का स्वरूप भौतिक रूप से होता है। रूपाला ने कहा, स्वास्थ्य मंत्रालय दवाओं और टीकों की अंतिम मंजूरी देता है। पशु चिकित्सा उत्पादों के मामले में ये हमारी ओर से एनओसी के बिना नहीं दे सकता है। चूंकि एनओसी देने का काम भौतिक रूप से किया जाता था, इसीलिए इसमें देरी होती थी। इसी को देखते हुए नंदी पोर्टल नई दवा और नई टीकाकरण प्रणाली के लिए एनओसी अनुमोदन शुरू किया गया है। रूपाला ने कहा, यह समय के अनुसार उठाया गया कदम है, क्योंकि देश में चलाए जा रहे पशुधन टीकाकरण अभियान के कारण पशु चिकित्सा उत्पादों की अधिक मांग बढ़ने की संभावना है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि सरकारी खरीद पोर्टल GeM के संचालन और रखरखाव का जिम्मा देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर निर्यातक कंपनी TCS को दिया गया है और विभागों के लिए वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद को लेकर सरकारी ई मार्केट पोर्टल की शुरुआत 9 अगस्त सन 2016 में की गई थी। गोयल ने कहा कि उनका मंत्रालय व्यवस्था में लगातार सुधार का प्रयास कर रहा है। GeM पुरस्कार समारोह में गोयल ने कहा, अब हमने एक नया अनुबंध भी किया है। इस साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में हम एक नई प्रणाली विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं जो अधिक समसामयिक और आधुनिक होगी। हम संचालन को आसान बनाने और आपको यानी कि खरीदार और विक्रेता खरीदी निर्णय में मदद को लेकर आंकड़ा विश्लेषण उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए TCS ने अनुबंध जीता है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता.com पर। नमस्कार।